तो जहां पीछे रह जाए। क्यों पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो दूड़े तो जहां भी पीछे रह जाए।
किसी ने अपनी जीवन कहानी 5 अध्याय में लिखी है। चैप्टर 1, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढा बहुत गहरा था और मैं उस गड्ढे में गिर गया और नीचे से मैंने चिल्लाया, मैं चिल्लाया, ये मेरा दोष नहीं है, किसने ये गड्ढा बनाया, मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे बचाओ। और मैं उसमें से निकल ही नहीं पाया, बहुत समय लगा मुझे निकलने के लिए। चैप्टर 2, मैं अब उसी रास्ते से जा रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढा बहुत गहरा था, पर मैंने ऐसा जतलाया जैसे मैं गड्ढे को नहीं देख रहा हूं और मैं गड्ढे में फिर गिरा। गलती मेरी नहीं थी, मैं चिल्लाया और मुझे गड्ढे से निकलने में बहुत समय लगा। चैप्टर 3, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, गड्ढा बहुत गहरा था, और मैंने कोशिश की अपने आप को बचाने की, पर आदत हो गई थी इसलिए गड्ढे में गिरा। पर इस बार मैंने कहा गलती मेरी है और मैं तुरंत बाहर निकल गया। चैप्टर 4, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढा बहुत गहरा था, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। ये जीवन कहानी है 5 अध्याय की। पहला अध्याय गड्ढा है, मैं गया और गिर गया, दोष किसको लगाया, मेरा दोष नहीं है, किसी और का दोष है। ये गड्ढा बनाया क्यों, सरकार को समझना चाहिए, बीच रास्ते में गड्ढा बना के रखा है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। ये पहली स्टेज है जहां व्यक्ति जीवन में गिरता है, यह अज्ञान की अवस्था है, उसे पता नहीं था, पर गिरने के बाद वो दोष दूसरों पर दोषारोपण कर रहा है, चिल्ला रहा है, और जब वो दूसरों को दोषी ठहराता है शायद कभी निकल ही नहीं पाए, या निकले भी तो बहुत समय के बाद निकलेगा गड्ढे से। सेकेंड स्टेप, उसको पता है गड्ढा है फिर भी उसी रास्ते से गया, पर ऐसा दिखाया जैसे गड्ढा मुझे, मैंने देखा ही नहीं गड्ढे को, और गिर गया उसमें। फिर भी उसने यहां पर वही किया जो पहले किया था, चिल्लाया और दूसरों पर ही दोष लगाया। यहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत समय के बाद निकला वो। तीसरी बार फिर गड्ढे में क्यों गिरा? क्योंकि आदत हो गई थी दो बार की, पर अब इसमें एक परिवर्तन है, वो कौन सा? दोषी मैं हूं, मैं गिरा हूं अपनी गलती के कारण। उसे इतना यहां समझ में आया है, और जैसे ही उसे समझ में आया कि दोष मैं हूं, वो क्या हुआ? तुरंत बाहर निकल गया। चौथी में वो गया और गड्ढे के आसपास चक्कर लगा के निकल गया, क्योंकि अब उसे क्लियर कट पता चल रहा है कि ये गड्ढा है और मुझे इसमें नहीं गिरना है, क्योंकि पुराने तीन अनुभव है, ठोकरें खा चुका हूं, अकल आ गई है, बादाम से नहीं आई जो ठोकर से आई। और चौथी बार क्या कर दिया फिर? उस रास्ते में मुझे जाना ही नहीं है। बस स्टेशन पे जाके हम पूछते हैं क्या, अहमदाबाद वाली बस कब आएगी, कब जाएगी? हमको जाना ही नहीं है उधर, हमको कहीं और जाना है, माउंट में जाना है ना, तो वहां की बस पूछो, आबू रोड स्टेशन पे जाके, बस स्टैंड पे जाके। जहन्नुम में जाने वाली ट्रेन कब आएगी? पूछ के क्या फायदा, जानकारी लेके वहां की। तो ये पांच अध्याय चैप्टर स्कंद है जीवन के, और व्यक्ति धीरे धीरे सीखते जाता है, सीखते जाता है। और बाबा आज हमें एक नया हुनर सिखा रहे हैं। कौन सा है वो हुनर? यू पर लगा ये आसमां भी नीचे रह जाए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वो हुनर सिखाने आया हूं जिससे तुम बिना कौड़ी कहां पहुंच जाते हो? सूरज चांद सितारों से आगे। वो लोग भी पहुंचते हैं परंतु डर रहता है, जोखिम उठाते हैं। बहुत बड़ी रिस्क है, रॉकेट गिर ना जाए। तुम्हें कोई जोखिम नहीं है क्योंकि तुम शरीर ही यहां छोड़कर जाते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में क्या अंतर है? आज की मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे क्या बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। यू पर लगा कि आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दोनों जहां भी पीछे रह जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ ला, चल तू यू की एक कारवा बना। तू जो ठान ले तो खुद ही को जान ले, तू तूफान भी अपना रुख बदल जाए। तूफान उधर से आ रहा है और हम इधर से आ रहे हैं, अक्षयोणी सेना से भी अधिक पावरफुल। तूफान भी कहेगा खतरा है, दूसरे रास्ते से निकल लो, इनको रास्ता दे दो। कुछ यू चले आ कि सब हो अपने पीछे, कुछ यू उठे हम कि तारों से ऊपर, खुद से लड़े हम खुद हो खुद से बेहतर। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ है? कंपटीशन अपने आप से, मुझे अपने आप को हरा देना है। कल जो मैं था उसे आज आगे निकल जाना है। लेके जमी से आसमां तक अपना नाम लिख जाए, लिख जाए। हाथ उठा चंदा तारे तोड़ ला, चल तू यू की एक कारवा बना। जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तो तूफा भी अपना रुख बदल जाए। यू पर लगा ये आसमां भी नीचे रह जाए। तो बाप हमें क्या सिखलाने आए हैं? रूहानी हुनर, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में चले जाते हो। हुनर अर्थात कला, हुनर अर्थात आर्ट, हुनर अर्थात कोई स्पेशलिटी, हुनर अर्थात कोई विधि, हुनर अर्थात कोई विशेषता, हुनर अर्थात कोई तरीका, हुनर अर्थात कोई तरकीब, हुनर अर्थात कोई टेक्नोलॉजी, हुनर अर्थात कोई एक्सपर्टीज, हुनर अर्थात कोई एबिलिटी, हुनर अर्थात कोई प्रतिभा, हुनर अर्थात फ्लेयर, एप्टीट्यूड, हुनर अर्थात कोई मास्टरी, हुनर अर्थात किसी में पीएचडी, हुनर अर्थात किसी में स्पेशलिस्ट, हुनर अर्थात क्रिएट, हुनर अर्थात उसमें एक्सपर्ट, उसमें मालिक हो वो, माहिर है जिसमें वो, माहिर उसमें माहिर है, हुनर अर्थात योग्यता, योग्यता लगे, हुनर दक्ष, डेक्स्ट्रस, काबिल, काबिल थोड़ा अलग है, दक्ष माहिर, दक्ष हुनर, और दक्षता, हुनर अर्थात प्रवीण, निपुण, प्रवीण निपुण माहिर दक्ष, ये है हुनर। तो बाबा हमको क्या सिखलाने आए हैं? आध्यात्मिक हुनर, रूहानी हुनर, आध्यात्मिक दक्षता, आध्यात्मिक प्रवीणता, डेक्सटरिटी कहते हैं इंग्लिश में, नैक कहते हैं इंग्लिश में, आर्ट कहते हैं, स्किल कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, ढेर सारे शब्द है। तो बाबा हमें ये रूहानी हुनर सिखाने आए हैं। संसार में कौन कौन से हुनर होते हैं? किसी में हुनर अर्थात कला, हुनर अर्थात फन, ये फनकार है, फनकार कहते हैं ना, हुनर, इसमें ये हुनर है। ऐब और हुनर दो चीजें होती है, ऐब अर्थात कमी, हुनर अर्थात पॉजिटिव, ऐब अर्थात निगेटिव। संसार में ढेर सारी हुनर है, जैसे एक हुनर है दूसरों को उल्लू बनाना, चोरी करने का हुनर, दूसरों को ये कहते हैं ना, एक व्यक्ति से कहता है कि मैं किसी को भी उल्लू बना सकता हूं, तो कहता है तुम चाहे किसी को भी बनाओ, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। वो कहता है शर्त लगी? हाँ लगी। तो बोले जस्ट रुको, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। जस्ट रुको, शर्त लगी ना, पक्का है ना? बोलता पक्का, आज तक मुझे कोई बना नहीं सकता। जस्ट मैं काम करके आता हूं। वो जाता है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तो वो पूछता है उस दुकानदार से, वो भाई, वो आदमी कब आएगा? मेरी शर्त लगी है उससे, वो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता है। बोलते तुम तो मूर्ख बन चुके। वो बना चुका है तुमको। तो किसी को ये भी कला बहुत ज्यादा आती है, उल्लू बनाने की कला, खुशामद करने की कला, मस्का लगाने की कला, मक्खन फैक्ट्री, कोई कोई होते हैं ना मक्खन फैक्ट्री, मस्का अच्छा लगाते हैं, इतना बस पिघला देते हैं दिल को। तो संसार में बहुत सारे हुनर है, बाबा भी हमको कुछ हुनर सिखाते हैं। आज हम उन हुनरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला हुनर जो बाप हमको सिखलाते हैं वो है न देखना। न देखना, तुमको कुछ देखना ही नहीं है, अब तक बहुत देख लिया, अब कौन सा हुनर सीखना है? न देखने का हुनर। इस दुनिया को देखते हुए भी न देखो, अर्थात क्योंकि इसको आग लगने वाली है। किसको आग लगने वाली है? दुनिया को, आंखें सहित, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित, उसको आग लगने वाली है। सब कुछ आग लग जाएगी, सब हर चीज गारत हो जाएगी, सब कुछ खत्म। तो सबसे पहला हुनर, सबसे पहली स्किल, सबसे पहली प्रवीणता जो हासिल करनी है, दक्षता जो अपने आप में लानी है, वो है कि इस संसार को देखो, पर इस संसार को देखो ही नहीं, अर्थात इस संसार की कोई भी वस्तु हमें आकर्षित ना करे, इस संसार की किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वैभव में आंख न डूबे। व्यक्ति का स्वभाव है आंखें डूबती है उसकी, कोई भी अच्छी चीज और हमारा स्वभाव, हमारी आंखें वहां डूबती है जो चीज हमारे पास नहीं है। जो चीज हम में होगी, हमारे पास मोबाइल है, उसके पास भी मोबाइल है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे पास मोबाइल है, उसके पास थोड़ा, उसकी साइज थोड़ी बड़ी है, स्क्रीन उसकी बड़ी है, तो वहां आग डूबती है। फिर लगता है हमको भी ऐसा चाहिए। आत्मा कपती है, मन डोलता है। तो कुछ भी न देखने का अभ्यास, अर्थात देखो पर न देखो। इसका मतलब देखते हुए भी वो चीज हमें आकर्षित न करे। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? आंखें तो बंद नहीं कर सकते, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएगी, या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह दबा के बैठ जाता है। उधर से देखा शत्रु आ रहा है, वो अपना मुंह उसमें घुसाता है जमीन में, कहता है मैं सुरक्षित हूं। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी कहते हैं उसको। तो क्या किया जाए? वही करना चाहिए जो सुकरात करता था, सोक्रेटिस। रोज मार्केट में जाता था, सारे मार्केट का चक्कर लगा के आता था। लोग कहते थे तुम सन्यासी ठहरे, तुमको इतनी अभी भी तुम्हारा ये चस्का गया नहीं चीजों को देखने का। वो कहता था मैं ये देखने जाता हूं कि संसार में कितनी सारी चीजें से, ये कोट, ये पैंट, ये जूता, इसके बगैर मैं कितना सुखी हूं। इतनी सारी खाने की चीजें हैं, बिना इनके खाए मैं स्वस्थ हूं। इतने सारे सौंदर्य प्रसाधन है, उसके बगैर मैं ठीक ठाक चल रहा हूं। संसार की वस्तुओं को देखते हुए ये सोचना कि इसके बिना भी मैं सुखी हूं, ये मेरे पास नहीं है तो भी ठीक। तो सबसे पहली कला, सबसे पहला हुनर, सबसे पहली आर्ट, सबसे पहली स्किल है देखो पर नहीं देखो। उसमें ये भाव लाना है कि ये मेरे पास नहीं है फिर भी मैं सुखी हूं, एक। दूसरा, ये विनाशी है। तीसरा, बहुत दुखदाई है, ये मिल जाए ना तो बहुत दुख होगा मुझे, इसलिए जो नहीं है उसमें ही ठीक है। भ्रमिक, भ्रम जैसा है, स्वप्न जैसा है, ऐसा लग रहा है वहां वो मिलने के बाद सुख मिलता है पर नहीं मिलता है। जितनी कम चीजें उतना सुख ज्यादा। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम 5 साल हो गए और जब निकले, एक बैग बस, जो लेके आए थे बस उतनी बैग लेके निकले वहां से। लोग मधुबन में आते एक बैग लेके, कितनी बैग लेके जाते हैं? वो जो भी है, कितने भी सेवा की लेबल चिपका हो बैगों पर, पर वो ज्यादा है। हम लोग एक जगह भट्टी के लिए गए थे, वहां पे जो कमरे थे उन कमरों में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था, एक खटिया, बिस्तर बस, और कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं मिनिमलिस्ट वे ऑफ लिविंग। कम से कम चीजें, ना तो कोई घड़ी, ना तो कोई फोटो, ना तो कोई फ्लावर पॉट, ना कुछ, कुछ नहीं, कम से कम चीजें रखना। ये भी एक लिविंग कहते हैं इसको, एक वे ऑफ लिविंग है ये। कुछ संप्रदाय है संसार में, वो ऐसा जीते हैं कि कम से कम चीजें रखे, क्योंकि उनका ये सिद्धांत है कि चीजें आते ही मोह चालू हो जाता है, चाहे उपयोग करो या ना करो। दूसरी कला, न सुनने की कला। संसार में आर्ट ऑफ लिसनिंग सिखाया जाता है। बाबा हमें कौन सा हुनर सिखा रहे हैं? सुनना ही नहीं है तुमको। क्या नहीं सुनना है? एक मुरली के बहुत अच्छे महावाक्य डायरी में नोट करने जैसे, बाप के ज्ञान के अलावा जो भी ज्ञान है सब सत्यानाश करने वाला ज्ञान है। बाबा ने एक जगह बोला था, इस संसार में जो भी ज्ञान है, बाप जो ज्ञान सुनाते उसके अतिरिक्त सब कुछ सत्यानाश करने वाला ज्ञान है, सब कुछ नाश कर देगा तुम्हारा, सुनना ही नहीं है। एक मुरली में था, यदि तुम देखो कि तुम्हारे सामने कोई नॉवेल पढ़ रहा है तो क्या करो? پکڑ کے کس کو فاڑ دو؟ ناول کو. تو جا کے اس کا ناول ہی فاڑ دو. پریورتن کچھ نہیں, پاون نہیں بنے تو سننا نہیں. بہت سن لیا, منشیوں کو سن لیا, شاستروں کو سن لیا, ویدوں کو سن لیا, اپنیشدوں کو سن لیا, ویکتیوں کو سن لیا, ریتی رواج رسم سنسار کے, روڑی وادیتا سپرسٹیشنز بہت سن لی. اب میں جو سناتا ہوں وہ سنو. اور ہاں ایسے سنو, کمپیر کرو اس گیان میں اور اس گیان میں کون سا سچ صحیح ہے. کانٹراسٹ کرو ہمیشہ سنتے سمے. پوری مرلی کانٹراسٹ ہوتی ہے, بھکتی میں وہ یہاں وہ, بھکتی میں وہ یہاں وہ, ستیوگ میں وہ یہاں وہ, ساری مرلی کانٹراسٹ میتھڈ ہی ہوتی ہے. بابا کمپیر کرتے, کیونکہ بنا کمپیریزن کے بدھی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے چیزیں. ہر چیز کا کمپیریزن ہے, ہر چیز مرلی ارتھات کمپیریزن, تلنا ہی ہے مرلی میں. ادھر یہ ادھر وہ, میں یہ کہتا ہوں وہ کہتے. جب بھی کوئی چیز سنو اس لیے ادھر کا بھی پتا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ادھر کا پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑھو اس لیے تاکہ کو ریلیٹ کر سکو بابا کے گیان سے. تو دوسری کلا کون سی ہے؟ نہ سننے کی کلا. تیسری کلا ہے نہ بولنے کی کلا. بول بہت لیا, اب چپ, مون, غائب ہو جاؤ, سن ہو جاؤ, گم ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, سناٹا چھا جائے. جیسے وہ کوئی سنیاسی شریر چھوڑتا ہے تو کیسے سناٹا چھا جاتا ہے؟ ڈیڈ سائلنس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ گونگے پن جاؤ. تو یہ سارے شبدوں کا پریوگ بابا نے کیا ہے. بہت بول لیا, بولنے سے بہت زیادہ پراپتی نہیں ہے. ہاں سننے سے تو تھوڑی زیادہ ہے, کیونکہ بولنے والا بول رہا ہے. پر سننے والوں کو فائدہ زیادہ ہے یا بولنے والے کو فائدہ زیادہ ہے؟ سننے والے کو زیادہ ہو سکتا ہے. تو وہ زیادہ کون بولتا ہے مرلیوں میں آتا ہے؟ وہ مینڈک کیا کرتا ہے؟ ٹرا ٹرا کرتے رہتا ہے. شاستر آدھی کے لیے مرلی میں آیا تھا نا ابھی کچھ ماس پہلے, مینڈک ٹرا ٹرا کرتے رہتا ہے. تو نہ بولنے کی کلا. اس کے بعد میں ہے سپرش نہ کرنے کی کلا. منشیہ کی عادت ہے کوئی بھی چیز دیکھی تو کیا کرتا ہے؟ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے کیسی ہے, ہارڈ ہے, سافٹ ہے, کیسا ہے, چاہے وستو یا شریر. کل کی مرلی میں تھا کسی کسی کا لگاؤ کس میں ہو جاتا ہے؟ وردان میں. کسی کسی کا لگاؤ کس میں ہو جاتا ہے؟ شریر میں ہی لگاؤ ہو جاتا ہے. کسی کا شریر ہی اچھا لگنے لگتا ہے. ساری مایا چالو. گن وشیشتا وہ بعد میں کہا, پر سب سے پہلا شبد بابا نے پریوگ کیا شریر. شریر میں لگا ہو گیا, اپنے نہیں کسی اور کے. تو نہ سپرش کرنے کی کلا, اسپرش رہنے کی کلا, اسپرشت جیون. کوئی ہمیں سپرش نہ کرے, نہ ہم کسی کو سپرش کرے, دونوں میں پوترتا ہے. کس تل پر سپرش؟ سنکلپ اور نظر. ہاتھ نہیں, ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے, بہت بعد میں ہے, ضروری نہیں ہے. ہم نے اس کے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے او پی ڈی میں جین سادھوی آتی ہے, بیٹھتی ہے, ہم او پی ڈی پیپر لیتے ہیں, دیتے ہیں واپس تو کہتے ہیں نیچے رکھ دو. یہاں بیٹھی ہے لو, وہ بھی نہیں لیتی ہے, کہتی ہے نیچے ڈال دو, اور نیچے سے اٹھا کے جائے گی. پھر سپرش نہیں کرنا ہے ان کو, چاہے کوئی بھی ہو, بوڑھا ہو, بوڑھی ہو, سامنے والا چھوٹا بچہ ہو. ہاں تو ان کی اپنی نیم بہت سٹرکٹ ہے وہ, اور اس کی وجہ سے ان کی دھارنائیں بھی ویسی پاورفل ہیں. ایسا بہت کم دکھا گیا کہ ایسی جو جین سادھویا ہے अचानक संसार के प्रति मोहित हो गई वापिस। जीवन ही स्ट्रिक्ट है इतना। इस तरह का कभी नहीं होता है उनमें, क्योंकि बहुत अपने आप को तपाया है शरीर को। हमारे पास आती है, कहती डॉक्टर साहब अभी आज लिख दो, कल से तो अभी मेरा मौन है 6 महीना, मैं तो आऊंगी नहीं, 6 मास के लिए मौन। कुछ बोलेंगे? किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, अभी 6 मास चुप। क्या करेंगे? साधना, अपनी साधना में लगे बस। तो ना स्पर्श करने की कला, किसी को भी स्पर्श नहीं करना है, जितना हो सके स्पर्श अवॉइड, क्योंकि स्पर्श में माया है। हाँ, वो दूसरी बात, आपने अव्यक्त बाप दादा को हमने देखा है ना, सबने कितना स्पर्श करते हैं, कम से कम अपने भी शरीर को भी कितना स्पर्श कम है, बस बैठे खाली दादियों को थोड़ा करेंगे, बस हो गया, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। और हमारी आदत होती है बहुत ज्यादा स्पर्श करने की। वो दूसरी बात है, प्रेम का एहसास, वो भी चीते है इसमें, वो भी चलो ठीक है, पर जितना हो सके कम ही स्पर्श करे तो बहुत अच्छा है। पर मॉडर्न सोसाइटी में जहां मॉरल्स लूज है, जैसे कॉलेज ये सारे जो रहते हैं, उनमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, और वही तो सबसे ज्यादा गिरते हैं। एक है वो स्कूल जहां केवल बॉयज है, एक वो स्कूल जहां केवल गर्ल्स है, एक तीसरी स्कूल है जहां मिक्स्ड है। ज्यादा गड़बड़ कहां होती है? ये थर्ड में, जहां केवल गर्ल्स स्कूल है, जैसे बहुत सारी मुस्लिम स्कूल्स होती है, वहां बॉयज नहीं होते, केवल गर्ल्स। बहुत सारी स्कूल्स, क्रिश्चियन स्कूल्स होती है, ओनली बॉयज या ओनली गर्ल्स। और कुछ कुछ जो होते हैं, जैसे ये बॉयज 10वीं तक ठीक रहते हैं, कॉलेज में आते ही सब साथ में आ जाते हैं, यहां अकेले अकेले जाते थे, अब साथ साथ मिलके जाते थे। पहले पहले बड़े बड़े ग्रुप में जाते, फिर दो दो के ग्रुप में जाते, फिर काट छाट करके पता चलता है ना, ये थोड़ी ठीक है, उसको समझ में आता है ये ठीक है मेरे लिए, बाकी नहीं चाहिए, यहां गड़बड़ चालू हो जाती है। तो न स्पर्श करना, उसके बाद है न सूंघना। संसार में दुर्गंध ही दुर्गंध है विकारों की, ये विकारों की दुर्गंध से क्या कर देना है, गुजरो तो नाक ही बंद कर देना है। नाक बंद करके नहीं गुजरेंगे तो माया नाक पकड़ के गटर में डाल देगी। इसके लिए सूंघने से भी प्रभावित नहीं, कहीं पर बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कहीं दुर्गंध आ रही है, हमारे मुंह के हाव भाव बदल जाते, वो भी स्वराज्य अधिकारी की अवस्था नहीं है। तो ये हो गए 5। सबसे पहला न देखना, न सुनना, न बोलना, न सूंघना, न स्पर्श करना। अगला न खाना। बाबा हमको कौन सी हुनर सिखा रहे? न खाने का। हम क्या खा रहे? खाना अर्थात न खा, न खा। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने माताओं से पूछा है, माता है क्या करने आई हो यहां? टाइम वेस्ट करने आई हो और केवल रोटियां पकाने आई हो कि तपस्या करने आई हो? हमारा समय किस में जा रहा है? ईटिंग में और आउटिंग में, बस घूमना फिरना और खाना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का आनंद भोजन जिसका है, वो कभी तपस्या नहीं कर सकते। सारी ऊर्जा भोजन बनाने में, भोजन खाने में जा रही है, उसको पचाने में जा रही है, और फिर रोग होने के बाद रोग से मुक्त होने में जा रही है। 3 शब्द है, इसके पहले भी बताया था, एक है निरोग, एक है आरोग्य, एक है स्वास्थ्य। तीनों में कितना अंतर है? पहला है निरोग अर्थात बीमारी है उसको हटाओ, दूसरा है आरोग्य, आरोग्य अर्थात ऐसा भोजन खा रहे कि जिसमें बीमारी आने की कोई संभावना नहीं है, ये उसके ऊपर की अवस्था है। और उसके भी ऊपर की अवस्था है स्वास्थ्य, स्व के स्थिति में स्थित रहना, स्व के स्वरूप में, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। विज्ञान मेडिकल साइंस जो काम कर रहा है वो यहां काम कर रहा है निरोग में, आरोग्य पर कुछ कुछ थोड़ा पहुंचा है, स्वास्थ्य अभी बहुत दूर है, क्योंकि स्वास्थ्य तक पहुंचने के लिए तो अध्यात्म चाहिए, संयम चाहिए, नियंत्रण चाहिए, उपवास चाहिए। तो सबसे बड़ा हुनर है न खाने का हुनर, अर्थात उपवास का हुनर। यह भी एक तपस्या है। उपवास सभी बीमारियों का इलाज भी है, ऐसा कहा जाता है। चाहे कितना भी कुछ रहने दो, परंतु क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं उस पर है। बुद्धि वहां जा रही है, मुरली में बैठते बैठते मुंह में पानी है कि कब पूरा हो ये और उधर जाऊं न खाना। उसके बाद अगला है न चलने की कला। बाबा कहते तुम्हें चलना नहीं है, क्या करना है तुम्हें? उड़ना है। तुम उड़ कर जाते हो चांद सितारों से पार, उड़ने की कला सीखने कितना चलोगे? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि मनुष्य ने धरती पर चलना सीख लिया है, मनुष्य ने आसमान में उड़ना सीख लिया है, मनुष्य ने पानी में तैरना सीख लिया, पर धरती पर कैसे चले वो नहीं सीखा है। उसका अर्थ है जीवन कैसे जिए, उससे उसने लगाया है। पर वास्तविक चलना, वास्तविक चलना है पैर तो धरती पर है परंतु मन बुद्धि अर्श पर है, फर्श पर नहीं। उड़ने की कला। अगला है हाथों से कुछ न करने की कला, अर्थात संसार में संसार हाथों से क्या करता है? काम करते हैं, हम करते हुए भी नहीं कर रहे, अकर्ता, हमने किया ये भाव ही नहीं है, अपने आप हो गया, अपने आप बाबा करा रहा है। जहां ये मैं आ जाए कि मैंने ये सेवा की, मैं ये सेवा करता हूं, मैंने ये सहयोग दिया, इस सेवा में मेरा सबसे भाग रहा, गया, वर्णन किया गया, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारे द्वारा कराया गया है। तो ये तीन बातें। उसके बाद अगला पवित्र बनना और पवित्र बनाने की कला। ये कला आध्यात्मिक रूहानी हुनर है। हमें संडे की मुरली रोशनी लो और रोशनी दो, हम उतना ही दूसरों को पवित्र बना सकते हैं जितना हम पवित्र बने। स्वयं आत्मा में निरंतर प्योर थॉट्स डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। कब तक? कब तक? जब तक वो पवित्र नहीं बन जाती। बहुत इसमें इतनी अपवित्रता, इतनी दुर्गंध है जन जन की, एक दिन में नहीं जाने वाली, एक हफ्ते में नहीं जाएगी, एक साल में नहीं जाएगी, कितनी भी मुरलियां पढ़ो, पर वो है सब वहां भरा। दूसरी कला है सकाश देने की कला। कैसे सकाश देनी है? क्या बन जाना है? कांच। आत्मा कांच के जैसा स्वच्छ बन जाए ताकि परमात्मा की किरणें वहां पड़े, तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कहां सकाश दूं, जहां जरूरत है अपने आप चली जाए, इधर जाए इधर जाए। एक है सोचना यहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, एक है अपने आप जा रही है। जीवन ही ऐसा बन गया है कि अपने आप जो भी हो रहा है सेवा ही हो रही है उससे, सकाश की सेवा। अगला है वो बाद में, इसमें तीसरा कौन सा है अभी भी सुना ना थोड़ी देर पहले, ये तीनों में सकाश, पवित्रता और उपचार, हील करना, हीलिंग पावर। ये रूहानी कला है, रियल हीलिंग की आर्ट हर एक को सीखना है। अपने शरीर को खुद ही संकल्पों से कैसे ठीक किया जाए, स्वस्थ कैसे रखा जाए ताकि बीमारी ना आए, और बीमारी आए तो जल्दी से जल्दी कैसे हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि बीमारी के समय व्यक्ति के संकल्प उसे और बीमार करते हैं। उसके निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है अंदर कि निगेटिव ऊर्जा उसे ठीक नहीं होने देती है। जैसे एक व्यक्ति लकवा हो गया, कमरे में पड़ा है, सब कहते उसको कोशिश तो करो, कहते कैसे करूं, मेरा लकवा है, मैं चल नहीं सकता है, ऊपर के माले पर है, और अचानक एक दिन भूकंप आ गया, भाग के नीचे आया, कैसे पाया? ये यहां था, अंदर समाया हुआ कि मैं चल नहीं सकता, और भूकंप ने ऐसा झटका दिया डर का कि भाग के नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद फिर लोग कहते, अरे तुम चल दिए? वो कहते, कहां, मैं तो कहां चल ही नहीं सकता, पकड़ो मुझे अब, ले चलो। अभी वापस वही हालत में आ गया, अभी नहीं चल पा रहे। जब जान पे बनाती है तो कुछ भी करने को तैयार होता है, सारा इधर है इधर। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी इधर मन में समाई है। अगर कोई संकल्प कर ले तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, इफ यू कैन फर्मली डिनाय इवन द वेनम ऑफ द स्नेक वुड बिकम पॉइजन लेस। यदि कोई कहे कि मुझे कुछ नहीं होगा, सांप ने काटा है, पर संकल्प कर ले कि मुझे ये जहर मुझ में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। संकल्पों में इतना बल है, इतना पावर है। इवन द वेनम ऑफ द स्नेक, वेनम अर्थात सांप का विष, विल बिकम पॉइजन लेस। वो उसकी विषाक्तता प्रभावित नहीं कर पाएगी। इतना हमें अपने संकल्पों का कोई खबर ही नहीं है, कितने पावरफुल है। संकल्पों से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। हीलिंग संकल्पों से की जा सकती है, पर वो लेवल पर अभी तक हम पहुंचे नहीं। अभी हम छोटी सी बीमारी हुई, दवाई लिया, ये किया, वो किया, ठीक हो गए। प्रयोग कितने किए हमने बीमारियों पर संकल्पों के? बहुत कम। दर्द हो रहा है यहां, क्या करता है व्यक्ति? एक गोली नहीं, तीन चार गोली, ताकि एक भी मूवमेंट ऐसा ना हो कि जिसमें दर्द हो, बिल्कुल कंप्लीट पेन फ्री रहे। इतनी दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। तो हमारा शरीर बीमारियों का घर किसने बनाया है? हमने, अपने ही खाने में। जितना प्रकृति से दूर उतने अधिक बीमार, जितना प्रकृति के नजदीक उतने कम बीमार। सिंपल फॉर्मूला है। तो ये तीन। अगला, जज न करना, दूसरों को जज ना करना, ये कला है। हमारी आदत क्या है? जज करना। जैसे आपने बताया था, और जो हमेशा बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हॉस्पिटल ले जाओ। हमें पता ही नहीं ना उसको क्या है। नॉन जजमेंटल, जज नहीं करना है दूर से, क्योंकि जो दिख रहा है वैसे है नहीं चीजें, चीजें कुछ और ही है। जैसे जब भी बोल रहे थे, हम देखा योग में बैठा है कोई भाई सो रहा है, हमने कहा देखा भाषण तो बहुत ठोकते है, और योग में खुद को नींद आ रही है। हो सकता है रात भर जागा हुआ है, हो सकता है बुखार है, हो सकता है बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, हो सकता है बिल्कुल सो नहीं पाया था उसके रात कोई कारण से, किसी दर्द की वजह से, कुछ भी हो सकता है। हमको दूर से थोड़ी दिखता है, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है, पर हमने जज कर लिया, कमेंट बना ली, और उसको विस्तार प्रचार प्रसार भी कर लिया। हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सबसे पहली बात, मुरलियों में आता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करो ही मत। किसी के बारे में हमको कुछ नहीं पता, और उसके भी ऊपर किसी पर तोहमत लगाना, बदकिरदार साबित करना, ये तो कलंक का टीका लगाना किसी के माथे पर, ये बहुत बड़े बड़े पाप की श्रेणियों में आता है। इनसे छूटने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, फिर इतना जल्दी नहीं छूटेंगे। हमें क्या पता है कि इसके बारे में? कुछ भी नहीं पता है। हम ये जान सकते हैं वो हमारे साथ था, वो इतने बजे उठता है, इतने बजे खाता है, ये करता है, उसके विचार, उसकी भावना है, उसके अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, उसके बचपन में क्या हुआ क्या जानते हैं, बचपन में किन अजियतों से, ट्रॉमा से, किन पीड़ा से, दर्द से, वो आजमाइशों से गुजरा है, हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। हम तो केवल ये देख रहे हैं यहां इसने ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। इसलिए किसी को भी जज ना करना। और लास्ट, किसी को भी कोई धारणा न करने की शक्ति, धारण न करने की शक्ति, हुनर। कौन सा हुनर? क्या निर्धारण करना है? किसी के अवगुणों को धारण नहीं करना है, किसी के ऐब, किसी की कमी, किसी की कमजोरी। बाबा ने कहा इसका मतलब बाप दादा ये नहीं कहते कि रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहो, रॉन्ग रॉन्ग ही है, परंतु उसे दिल में नहीं ले लेना है, समान नहीं लेना है, उसका चिंतन कर करके उसके ऊपर पूरा मास्टरी नहीं मिला लेनी है कि यह ऐसा ही है। और फिर दूसरों की कमी कर सोचते सोचते वो कमी हम में भी तो आ जाएगी फिर धीरे धीरे धीरे। हमने कहा कि ये बहुत परचिंतन करता है, ये भाई ना इसके पास इससे दूर रहना, ये परचिंतन करता है, ये भाई बहुत परचिंतन करता है, इससे दूर रहना, इससे दूर रहना। और हम ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को सुना रहे। इस प्रोसेस में हम क्या हो गए, हम भी तो करने लगे। तो ये कितनी बातें हो गई, 16। सबसे पहला 5 senses, न देखना, न सुनना, न बोलना, न स्पर्श करना, न टच करना। उसके बाद में मन के 3 कार्य है, कौन कौन से, अच्छा मन का बाकी है 3 और बाकी है, न सोचना, न फील करना और न इच्छा करना। ये 3 और हुनर है मन के, 3 काम होते हैं, 3 functions ऑफ माइंड। क्या करता है मन, सोचता है। बाबा ने कहा तुमको सोचने की जरूरत नहीं, बाप बैठा है, ओवर थिंकिंग में जाओ ही नहीं। दूसरा है मन क्या करता है, फील करता है, फील करता है, हर चीजों को ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं, ठीक है चीजें हुई छोड़ दो उनको, पकड़ के नहीं बैठ जाना है उसके बारे में सोचते बैठना है, ऐसा क्यों बोला उसने, वैसा क्यों बोला। तीसरा इच्छा ही नहीं करना, इस संसार की सांसारिक इच्छा है, जितनी अधिक होगी उतना अधिक दुख। तो ये 3, फिर बताया पवित्रता, हीलिंग और सकाश, ये 3 हुनर है। और फिर बताया बुद्धि के 2 फंक्शन, जज करना और इम्बाइब करना, धारण करना, ये न करना। ये सारी क्या है, रूहानी, ये सारा क्या है, रूहानी हुनर। तो ये हुनर सीखना है, पैरों से चलना बंद, अब क्या करना है, उड़ना है, उड़ने का काम करना है। यू पर लगा ये आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दोनों जहां भी पीछे रह जाए। ओम शांति। Let's go.